وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب لیا ہم نے تم سے پختہ عہد. اب ایک اور میثاق بھی, ایک دوسرے عہد کی بات ہو رہی ہے جو ان سے لیا گیا, اور وہ عہد کیا تھا؟ لا تسفکون دماءکم, کہ تم آپس میں اپنے خون نہ بہاؤ, یعنی آپس میں خون نہ بہاؤ. اپنا خون کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا یہ تو تمہارا اپنا خون ہے, یعنی اپنے اپنے لوگ ہیں. تو یہاں پہ بھی کیا, دماءکم, اپنے خون نہ بہاؤ سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنی قوم کے لوگوں کے, بنی اسرائیل کے لوگوں کے, بنی اسرائیل سے لیا جا رہا ہے نا, یعنی دوسرے اسرائیلیوں کا خون نہ بہاؤ, ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہ کرو. اور یہ بھی عہد مسلمانوں سے بھی لیا گیا. کیا حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا جان, مال, عزت حرام ہے, حرام. سوچیں, حرام ہے. اور دیکھ لیں ہمارے تو قرآن میں بھی یہ ہے نا, آگے آپ دیکھیں سورہ مائدہ میں کہ کسی کو بھی ناحق قتل کرنا وہ یا پوری انسانیت کو قتل کرتے ہیں. سورہ نساء میں آیت نمبر 93 میں کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دے گا تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کی لعنت ہے, اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا. ایک جان کو بھی نہیں جان بوجھ کے قتل کر سکتے. لا تسفکونا دماءکم, مت بہاؤ اپنے خون. آج آپ دیکھیں اتنا بلڈ شیڈ ہے, اتنا خون خراب ہے کہ انسان کو کبھی سن کے بھی کراہت ہونے لگتی ہے. یار اتنا خون خراب ہے کہ انسان کی جان جو ہے نا وہ ایک, میں کہتی ہوں جانور کی, وہ مرغی کی جان سے بھی زیادہ سستی ہو گئی. انسانی جان جو آج ہمارے معاشروں میں حال ہے, مسلمان مسلمان کا خون بہا رہا. اور یاد رکھیں سب سے پہلے قیامت کے دن خون کا فیصلہ ہوگا. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ, اور دوسرا عہد ان سے کیا لیا گیا تھا؟ نہ تم اپنے لوگوں, اپنی جانوں کو, یعنی کون اپنی جانیں, اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو. یعنی اس کا بھی کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے لوگوں کو دیکھیں, اس لیے کہ جو اپنے لوگ ہیں نا, اپنے ہی قبیلے کے یا اپنی قوم کے لوگ, بنی اسرائیل کی طرف یہ بات ہو رہی ہے نا. اب ہم ہیں تو مسلمان, تو ہر ایک قوم میں مسلمان ہیں, لیکن ان میں تو بنی اسرائیل ایک ہی قوم تھی, تو ان کے قوم کے جو لوگ ہیں وہ ان کے اپنے ہی لوگ ہیں. ایک کو گھر سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بے گھر کر دینا. کسی کا خون بہانے کا مطلب یہ, اپنے کا خون ہے تو سمجھ لو اب میں نے اپنا خون بہایا. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں مسلمانوں کو تو یہ کہا گیا اشداء الکفار رحماء بینہم, یہ کافروں کے ساتھ شدید ہے لیکن آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت نرم ہے, بہت رحم کرنے والا. یہ طرز عمل ہونا چاہیے تھا مسلمان کا, لیکن آج کیا ہے؟ اللہ اکبر, کیسے گھروں سے نکالا جا رہا ہے. اجتماعی سطح پہ تو ہے ہی, جو بھی ہو رہا ہے دیکھیں کتنی بڑی مائگریشنز ہو رہی ہوتی ہیں, ایک ملک سے دوسرے ملک میں لوگ پٹ پٹ کے جا رہے ہوتے ہیں, گھر چھوڑے ہوتے ہیں, بے گھر ہوئے ہوتے ہیں. آج آپ کے دیکھ لیں آپ کے ملک میں بلوچستان کا حال دیکھ لیں, وہاں سے کتنے لوگ مائگریٹ ہوئے. آپ اور علاقوں میں دیکھ لیں, آپ لوگ خود جانتے ہیں وہاں سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. بڑے بڑے سٹیز ایسے ہیں وہاں سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے اپنے گھر جا رہے ہیں. کیوں بیچ بیچ کے جا رہے ہیں اپنی زمینیں وغیرہ؟ کیوں اس قدر لولیسنس ہے؟ اتنا وہاں پہ رہنا تنگ کر دیا گیا کہ لوگ چھوڑ کے چل پڑے, دوسرے ملکوں میں جا کے پناہیں لے رہے ہیں. اور یہ اجتماعی سطح پہ بھی دیکھیں, انڈیویجولز میں بھی دیکھیں کہ گھروں سے نکالنے میں بعض دفعہ مرد بیویوں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ, نہ دن دیکھتے نہ رات. ٹھیک ہے, تو ہاں ان کو صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارا تو اس کے اندر کچھ نہیں ہے تو قوموں کی بات ہو رہی ہے, اسی کو ہم انڈیویجول لائف میں بھی اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے خون بہایا جاتا ہے. خون اگر جان کا نہیں بہایا جاتا تو کبھی جذبات کا خون کر دیا جاتا ہے. घरों में ऐसा जुल्म होता है, ऐसी बातों के साथ ऐसे तीर चलाए जाते हैं कि दूसरा इंसान छिन्नी हो जाता है, और घरों से इस तरह से निकाल दिया जाता है कि मजबूर कर दिया जाता है कि दूसरा घर छोड़ के चला जाए, बाकायदा धक्के दे के निकाला जाता है। तुम अकरार, तुम फिर इकरार किया तुमने, ये तो तुम्हारे अपने ही है, तुमने इकरार किया था कि तुम इस अहद के ऊपर कायम रहोगे, इन तमाम बातों को मानोगे। और आज भी सुलह के कई मुआहदे होते हैं, फिर भी आप देखें उसके बाद क्या होता, किसी को परवाह ही नहीं होती। और किसी मुल्क का कानून भी जो होता है, वो भी आपने इकरार किया होता है कि आप इस मुल्क के कानून को मानेंगे, फिर उसके बाद फिर वही चीजें हो रही थी, खून बहाया जा रहा होता है, लोगों को घरों से निकाल के बेघर किया जाता है, सिर्फ किस लिए, मेरी कौम का नहीं है, मेरी जुबान बोलने वाला नहीं, यहाँ लूट मार के तौर पे। ऐसे लगता है ये बनी इसराइल की क्या बातें हैं, तो हमारे ही दुख है, हम अपने ही दुख समझ लें कि इनको ही एक एक करके देख रहे हैं, इन सारी बातें जो बनी इसराइल के साथ उन्होंने की, जो उनके क्राइम्स थे, जो उनकी हरकतें थी, वो सब हमारे साथ। क्या मुसलमान के लिए नहीं किसी का माल हराम कर दिया गया, किसी को घरों से निकालना, ये क्या है? जब मर्द बीवी को निकालता है तो वो क्या होता है, वो भी तो अपनी ही थी, एक अहद करके उसको अपने ऊपर हलाल किया था, और फिर उसके बाद कैसे कुछ भी थोड़ी सी भी बात हो तो फौरन इसको अपना हक समझा कि जब चाहूं निकाल के बाहर खड़ा कर दूं। तुमने तो इकरार किया था, वह अंतुम तशहदून, अब तुम गवाही देते हो, तुमने गवाही दी थी। आप ये देख लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले की यहूद की बात हो रही है ना, उनसे इकरार लिया गया था, उनके ऊपर तूर को खड़ा किया गया था, तो इनको क्यों कहा जा रहा है कि तुमने गवाही दी थी, तुमने इकरार किया? इसलिए कि देखें जो अहद इनके अबाउ अजदाद के साथ था, वही इनके साथ भी है, वही कौम चली आ रही, ठीक है। और दूसरा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के यहूद गवाह हैं कि इनकी किताब में ये अहद लिया गया है, वो उन्होंने भी माना इस अहद को, ठीक है। और उस जमाने के लोगों ने भी क्या किया, तुम अंतुम हाउलाई तक्तुलून अनफुसकुम वतुखरिजूना फरीकम मिनकुम मिन दियारिहिम, फिर तुम में से ही लोग हैं, तुम्हारे में से ही लोग हैं जो कत्ल भी कर रहे हैं लोगों को, और तुम निकाल भी रहे हैं लोगों को घरों से। आप एक मुस्लिम सोसाइटी को देख लें, अपने मुल्क की सोसाइटी को देख लें, फिर बताएंगे क्या ये हो रहा है या नहीं हो। मुल्कों में देख लें, वो मुल्क देखें कि आज सीरिया में क्या हो रहा है, अपने ही अपनों को नहीं मार रहे क्या, और अपने ही असलहा दे रहे हैं कि अपनों को जाके मारो। जो सपोर्ट करने वाले मुल्क हैं वो भी अपने ही हैं, वो भी मुसलमान हैं। क्या अपने ही अपनों को कत्ल नहीं किया जब इराक और ईरान की जंग हुई, और कई और चीजें आप देखें, अपने ही अपनों को मारते हैं और अपने को घरों से निकालते हैं। तदाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उदवान, तुम चढ़ाई करते हो उनके ऊपर साथ गुनाह के और ज्यादती के, गुनाह और ज्यादती के साथ एक दूसरे के ऊपर चढ़ाइयां करते हैं, अल्लाह के हुक्म को तोड़ते हो। और इस्म और उदवान अलग अलग क्यों कहा गया, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म तोड़ा, गुनाह किया, हुकूल इबाद तोड़ा, हुकूल इबाद में ज्यादती की, उदवान किया। और ये वो लोग कैसे करते थे, इनकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री देख लेते हैं ताकि इनकी भी हमें समझ आ जाए। आज के वक्त में तो आप अपने सामने देख रहे हैं, मैं तो मुझे तो बताने की भी जरूरत नहीं हो कि कैसे ये हालतें आज सबके सामने, एक बच्चा भी समझ सकता है कैसे कैसे आज खून खराबे हो रहे हैं और कैसे घरों से निकाला जा रहा है, कैसे दर बदर किया जा रहा है लोगों को। अब ये देखने कि वहां मदीना की सोसाइटी देखें, यहाँ पे ये आयात उतर रही है, वहां पे तीन यहूदी कबाइल थे मदीना के इर्द गिर्द में रहते थे, उनके आउटस्कर्ट्स में, बनू कुरैदा, बनू नदीर और बनू कैनका, ये तीन कबीले, ठीक है। अब क्या होता था कि यहां पे इनके स्पेलिंग कैसे होंगे, ऑफ रो या रोए और हा, जो होती है हलवे वाली नहीं दूसरी, ये बनू कुरैदा, बनू नजीर दाल से नहीं है, रो से भी नहीं, दौद से बनू नदीर, और बनू कैनका ये तो आप लिख सकते हैं कॉफ या नून कॉफ आइन के साथ, फिर हाँ ये जो कबाइल थे यहूदी कबाइल थे, और यहां पे दो अरब कबाइल भी थे, एक का नाम था औस अलिफ वौसी और एक का नाम था खजरज खा जे रे जी। अच्छा अब क्या था, उस जमाने में भी अलायंसेस होते थे, हलीफ बन जाते थे, बाहम याराना कह लें, बेस्ट फ्रेंड्स कह लें, उस तरह बन जाते थे, यानी कसम खा के दोस्ती कर लेते थे कि बस अब हम सब में एक एक है, बस हम किसी एक के ऊपर भी कोई मैली नजर डालेगा, कोई किसी एक के ऊपर भी मेरे दोस्त के ऊपर या मेरे एलाई के ऊपर कोई हमला करेगा तो समझ लो उसने मेरे ऊपर हमला कर लिया, मैं भी उसके साथ फिर उस जंग करूंगा जिसने मेरे एलाई के साथ दुश्मनी की या उसके साथ जंग। अच्छा अब क्या था, औस का जो है ना बनू कुरैजा के साथ बाहम दोस्ती थी या हलीफ थे, उसको उसको हलीफ कहते थे, हल्फ लेके दोस्ती की जाती थी ना कि बस हम और तुम एक है। अच्छा और खजरज का बनू नदिया के साथ बाहम बिल्कुल याराना दोस्ती जिसको कहेंगे। और इसी तरह एक बनू कैनका भी था, बनू कैनका भी हजरत का ही हलीफ था। अच्छा अब क्या होता था, जब औस और खजरज के अंदर कोई लड़ाई मार कुटाई होती थी, कोई जंग होती थी, तो अब ये इनके जो सात यहूदी कबीले थे, एलाइज थे, अब उनको भी मुश्किल पेश आ जाती थी। जाहिर है बनू कुरैजा को जो कत्ल होगा या वो होगा, तो अब औस और खजरत में लड़ाई हो रही है, तो जब ये भी कूदेंगे बीच में, जो यहूदी इनके अलायज हैं, तो आपस में ये भी तो लड़ेंगे ना, तो यहूदी यहूदी को भी तो कत्ल करेगा, ठीक है, तो कत्ल तो होगा। और जब एक के साथ दूसरे की जंग होगी और एक दूसरे के ऊपर खून बहाएगा तो कैद भी किया जाएगा, घरों से भी निकाला जाएगा, ठीक है। तो लड़ाई औस और खजरज में है, लेकिन अब उनके जो एलाइज हैं बनू नजीर और बनू कुरैजा, वो औस का साथ देते थे, बनू नजीर और बनू कुरैजा औस का साथ देते थे, और बनू कैनका जो थे वो खजरज के साथ। अच्छा मैंने शायद पहले डिफरेंट कह दिया, इससे याद रखें, इसको याद करना भी एक आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री आप जब तक जानेंगे नहीं ना, आगे आयात समझ नहीं आती। मैंने तो इस तरह याद किया कि देखें बनू नजीर और बनू कुरैजा, काफ काफ वाले अलग अलग हैं, दोनों एक साथ नहीं है, बनू नजीर और बनू कुरैजा एक तरफ है, ठीक है, ये तो दो हो गए यहूदी कबीले। अब इनकी किस वाले अरब के साथ है, अरब कौन सा कबीला, एक औस है और एक हजरत है। अब दोनों में नजीर और कुरैजा में रा रा आ रही है ना, तो अब जिस अरब कबीले के साथ इनकी अलायंस होगा वो रा के साथ नहीं शुरू हो रहा, वो औस है, ठीक है। अच्छा बनू कैनका इसमें कोई रा नहीं है, ये हजरत के साथ जाएगा, समझ आ गई बात। तो याद करने के लिए बस एक टिप आपको दे रही हूँ, क्योंकि वरना याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कौन किसके साथ था। तो बनू नजीर बनू कुरैजा रा रा वाले कबीले यहूद के एक साथ है, और उनका जो अलायंस है वो उस कबीले के साथ है जिसमें रा नहीं है, औस है, वो ऑपोजिट्स है ना, ऑपोजिट्स वो एक साथ होते, बनू कैनका और खजरज एक साथ, सही। अच्छा जी अब कई किताबों में आप देखेंगे कुछ और भी लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादा सही यही मालूम होता है। अच्छा अब क्या है, चढ़ाई करते हुए एक दूसरे, अब तुम्हें अल्लाह ताला ने हुक्म क्या दिया था कि एक दूसरे को कत्ल नहीं करना, तुमने अल्लाह का हुक्म तोड़ा, गुनाह किया, तुम्हें आपस में भी एक दूसरे के ऊपर हकूक थे, तुम आपस में भाई भाई हो, एक कौम के लोग हो, तुमने हकूकुल इबाद में भी यानी तल्फी की, तो तुमने एक ज्यादती भी की। तुकुम उसारा तुफादू, अब जो आपको मैंने बताया कि जब जंग होती है तो कैद भी होते हैं लोग, तो अब जाहिर दोनों तरफ कैद हुए लोग, तो कोई लोग उधर चले गए कोई उधर चले गए। अब मिसाल के तौर पे कोई बनू कुरैजा का बंदा जो है वो हजरत कैद करके ले गए, फॉर एग्जाम्पल दूसरी तरफ वाले अरब कैद करके ले गए, इनके साथ लड़ाई हो गई, तो अब ये सारे यहूदी जो है ना, इनकी चूंकि तौरात में लिखा हुआ था, इनकी शरीयत में हुक्म था कि देखो कोई भी यहूदी अगर कैद हो जाए कहीं तो तुम्हें उसको छुड़ाना है, तुम्हारे ऊपर जरूरी है, कहते थे ले वो हमारी तो शरीयत के अंदर ये हुक्म है, आप इसकी इतनी पाबंदी करते थे, चल पड़ते थे उसको छुड़ाने के लिए, ये रैंसम दे के ना, फिदिया दे के तो उसको छुड़ाने के लिए एहतमाम करते। अल्लाह तला ने सुनाया वह मुहर्रम अलैकुम इखराजुहुम, हालांकि एट द फर्स्ट प्लेस तुम्हें तो इनका निकालना ही हराम था, तुमने इनको घरों से निकाला क्यों पहले, इनको दरबदर क्यों किया, मुल्क से निकालते भी हो अपने घरों, उनके घरों से निकालते भी हो, कत्ल भी करते हो, उसमें तो तुमने नहीं सोचा कि तुमसे ये अहद लिया गया कि नहीं कत्ल करना, नहीं घरों से निकालना, लेकिन जब वो कैद हो जाते हैं फिर तुम बड़े नेक बन के चल पड़ते हो, पारसा बन के चल पड़ते हो, हमें तो ये हुक्म दिया गया, हमने तो ये मानना है, ये कैसी बात है, क्या आज ये हो रहा है, ऐसी कोई आपको शक्ल नजर आती है? जब इराक की मिसाल देखें, जब मुस्लिम ममालिक ने इजाजत दे दी थी कि हमारे ऊपर से जहाज उड़ा के लेकर जाओ और इराक पे हमला करो, और वहां पे जो मुसलमान जख्मी हो जाते थे ना, फिर लाके उनका इलाज कराना शुरू कर देती थी, मुसलमान जो है ना यहाँ पे जख्मी हो गए, पहले तुमने उनको वहां पे उड़ने की इजाजत ही क्यों दी कि हमारे ऊपर से जाओ और जाके उनके ऊपर हमला करो, ये गैर मुस्लिम को पहले उनका साथ दे लिया कि अपने मुसलमानों को जाके मारो, और उसके बाद फिर उनकी तैयारी भी करनी, उनके इलाज भी करने शुरू कर, कि हम किस तरह की देखो डबल पॉलिसी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वहु मुहर्रम अलैकुम इखराजुहुम, एट द फर्स्ट प्लेस पहले उनका निकालना ही तुम्हारे पर हराम, तुम एक हुक्म मानते और एक नहीं मानते, उसके बाद वावेला कितना हम करते हैं ना, इतना वावेला करते हैं, पहले खुद ही गर्दने काटते हैं लोगों की, अपने लोगों की गर्दने काटते हैं, अपने लोगों को घरों से निकालते हैं, अपने लोगों को कैद करते हैं, अपने लोगों को हम उठा लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, और उसके ऊपर यानी तावान मांगते हैं, और उससे अपनी जेबें भरते हैं, अपने लोगों को लूटते हैं, घसूटते हैं, ये सारा करके, और उसके बाद कहते हैं गैर मुस्लिम तो मार रहे हैं, और गैर मुस्लिम तो, और गैर मुस्लिम अगर कैद करके ले जाए किसी को तो फिर बहुत दुहाइयां देते हैं, फिर बड़े रोते हैं, अरे देखो फलानी जगह पे कैद करके हमारे मुसलमानों को रखा, तुम खुद क्या करते, तुम तो खुद गर्दने काट काट के और फिर उसकी फिल्में बनाते और फिर लगाते कि पूरी दुनिया देखे थे देखो हम कैसे गर्दने काट, ये हमारा किरदार, इतनी उम्मत मुस्लिमा आज गिर चुकी है, इतना इनके ऊपर जवाल आ गया, ये इनका हाल बिल्कुल, ये आयतें आज 100% उम्मत मुस्लिमा के ऊपर यानी ऐसे इनके ऊपर बिल्कुल फिट आ रही, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकलमंद आदमी के लिए लाजिम है कि वो अपने जमाने के हालात से वाकिफ रहे, ये नहीं कि आप अलूफ जी रहे बैठी हुए, मुझे क्या पॉलिटिक्स है, मुझे क्या इससे, आपको पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है, आज के हालात क्या है, नहीं बस मैं तो अल्लाह अल्लाह करती, नहीं आप वो पता कैसे चलेगा किधर, जब आप इसलाह करना चाहेंगी अपनी उम्मत की या उसके लिए खड़े होना चाहिए, आपको पता कैसे चलेगा जब तक आपको बीमारी का ही नहीं पता, आप तो डायग्नोज ही नहीं कर सकते, आपको तो हालात ही नहीं पता क्या हो रहे हैं, आपको क्या पता चलेगा कि दिजाली वक्त कैसा आ रहा है, आपको क्या पता चलेगा क्यामत की कौन सी निशानियां पूरी हो रही हैं, आप अपने वो एक शैल में बंद होकर बस बैठे रहे, हालात से वाकफियत रखिए, क्या हो रहा है आपके इर्द गिर्द, कहां पे जुल्म हो रहा है, कहां पे ज्यादतियां हो रही हैं, तो ये देख लें कि वही चीज जो वो कर रहे थे यहूद वो ही आज मुसलमान कर रहे, अल्लाह ताला ने फरमाया अफतुमिनूना बिबादिल किताबी वतकफुरूना बिबाद, क्या तुम मानते हो किताब के बाज हिस्से को और बाज का इनकार करते हो, पहले तो तुम खुद ही जाके दूसरों के साथ बैठ जाते हो और अपनों का ही खून बहाते हो, उसके बाद तुम्हें अपनों से बड़ी हमदर्दी आ जाती है और उनके लिए उठ खड़े होते हो, तो पहले तुमने दुश्मनों का साथ क्यों दिया, पहले तुमने गैरों का साथ क्यों दिया अपने का खून बहाने के लिए, पहले तुम खुद अपनों का खून बहाने क्यों खड़े हो जाते हो, तुम्हें तो वही मना किया गया था लेकिन तुम क्या करते हो, किताब के बाज हिस्से को तो ईमान लाते हो और बाज को ऊपर इनकार करते हो, ये बहुत अहम बात, इसलिए कि ये यहूद की नहीं रविश थी, आज मुसलमानों में घर घर यही फितना, इनफरादी जिंदगी लेने या इज्तमाही लेने, बाज हिस्से पर जो हमारी मनपसंद हिस्सा है किताब का उसके ऊपर तो हम ईमान लाते हैं, कहते हम इसको मानते हैं, और बाज का कुफर करते हैं, बाज का इनकार करते हैं, क्या कोई मुसलमान भी इनकार करता है किताब का, नहीं कोई भी नहीं मुसलमान इनकार करता, तो फिर यहां पे क्यों कहा गया कुफर करते हैं, क्या यहूदी कुफर करते थे अपनी तौरात का, नहीं वो तो यहूदी रह ही नहीं सकते थे अगर वो कुफर करते, कभी नहीं उन्होंने कहा हम तौरात के इस हिस्से को नहीं मानते, फिर यहां पे क्यों काव्या कुफर करते हैं? हाँ, कुफर का मतलब है अहकामात का इनकार करना। वो जुबान से नहीं कहते थे कि हम इनकार करते हैं, हम नहीं मानते, नहीं, बस टोटली उसको इग्नोर करते थे, टोटली इग्नोर करते थे, अमल ही नहीं करते थे, ऐसे जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते ये हमारे तौरात, ऐसे उनसे यानी बिल्कुल ही ऐसे नजरें फेरने। जहां पे तो अपना फायदा नजर आए, जहां पे तो इजी लगे, जहां पे तो कन्वीनियंस हो, वो उस हिस्से को तो ले लिया। और कहा देखा कुरान में लिखा हुआ है ना, देखें ये। जैसे मुझे एक दफा किसी ने कहा बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं, वैसे वो अपने बच्चों को मना करते थे कि हिजाब नहीं लो, ये नहीं लो, कोई नहीं करो, लेकिन जब उनके बच्चों ने उनके सामने जुबान दराजी की तो उन्होंने मेरे साथ फौरन शिकायत की कि देखें आप इनको बताएं कि अल्लाह का हुक्म ये है कि माँ बाप की फरमा बरदारी की जाए और उनके आगे जुबान ना चलाए। तो मैंने सोचा ये इनको ये हुक्म इसलिए याद आया क्योंकि ये इनके अपने फायदे में जाता था, लेकिन जब बच्ची ने हिजाब लिया तो अल्लाह का ही वो भी तो हुक्म था, उसको वो मना कर रहे हैं। तो हम पिक एंड चूज करते हैं, हमारा काम क्या है, किताब के जो हिस्से हमें पसंद है उनको तो पिक कर लिया अपने, उनको तो बड़ी खुशी से लेंगे, और जो हमें लगता है, जो हम ना पसंद तो नहीं कह सकते, मगर जो हमें लगता है कि हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं या इजी नहीं है, या आज के जमाने में ये हमें आउटडेट लोग समझेंगे इसकी वजह से, उनको छोड़ देते। जिनको हमें लगता है ये हुक्म आज अगर हमने मान लिया ना तो जमाने में पीछे रह जाएंगे, तो इसी को तो इनकार कहते हैं। हम मुंह से चाहे बोले चाहे नहीं बोले, ये इनकार ही है कि जब हम किताब के बाज अहकामात को हम अपने लिए ऐसे बना लें कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। आज हम कौन से दीन के अहकामात को करने का शौक रखते हैं बताएं, खुद बताएं। जिसमें कोई रौनक मेला है, जिसमें कोई मजा है, जिसमें कोई फन हो जाए, जिसमें कोई कुछ हो जाए, फौरन कहते इस्लाम में भी तो ये है ना, या जिसमें हमारा फायदा हो रहा, इस्लाम में ये है ना, हमारा तो इस्लाम भी ये कहता है ना। आप देखते हैं बड़ा से बड़ा दुनियादार भी होगा ना, तो जो कुछ सी दीन की अलग बे तक नहीं वो जानता ना, फॉलो करता ना, नमाज पढ़ता ना, वो भी जब अपने फायदे की बात आती है ना तो आप बताएं ना हमारा इस्लाम भी तो ये कहता है ना, नहीं ये तो हमारा इस्लाम भी फिर कहता है, देखिए ये तो इस्लाम में भी, वो बाकी सारा टाइम तुम्हें इस्लाम कभी नहीं याद आता, बाकी सारी जिंदगी उठा के देख लो तो हर जगह इस्लाम ही के अहकाम को तोड़ा जा रहा, इस्लाम ही का मजाक उड़ाया जा रहा, इस्लाम ही के अहकाम की धज्जियां बखेरी जा रही। उस वक्त नहीं तुम्हें इस्लाम याद आता, उस वक्त तुम कभी नहीं कहता इस्लाम भी ये कहता है, हमारा इस्लाम भी नहीं कहता, तब बहुत इस्लाम के ठेकेदार बन जाते हैं यहां पे अपनी फायदा हो। तो वो भी पढ़ते तो सारा ही थे, मगर ईमान लाना, किताब को पढ़ने से ईमान लाना नहीं हो जाता कि हम कहें कि हम सारी सारा कुरान पढ़ते हैं हमारा सारे पे ईमान है, नहीं, जितना जितना आप उस पे अमल करते हैं वो ईमान लाना है, बाकी तो सिर्फ आप जुबानी कलामी बातें कर रहे हैं वो तो इनकार करना है। कैसे हो सकता है हम किसी चीज को माने भी और कहें भी कि जो है ना हमने नहीं अब इसके ऊपर अमल करना, कैसे हो सकता है? जब मान जाता है इंसान तो कहता है नहीं ठीक है, अगर ये बात सही है तो फिर जाहिर है उसके ऊपर अमल करता है। तो अमल में वो उसको नहीं मानते थे, अमली तौर पे कुफर करते थे, इसको अमली कुफर क्या है कह सकते हैं आप, और इसी को यहाँ पे तकफुरुन बिबाद कहा गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कुरान की हराम की हुई चीजों को अपने लिए हलाल कर लिया उसका कुरान पे ईमान नहीं है। कुरान की कोई चीज है जो अल्लाह ताला ने फरमा दी ये नहीं करना, अब आपने अगर अपने ऊपर कह दिया ना कि नहीं मैं तो करूंगी, मैं तो करूंगी, क्योंकि देखें इसके बगैर आजकल कहाँ जॉब मिलेगी, इसके बगैर कहाँ गुजारा होगा, इसके बगैर तो फिर देखें लेकिन जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो ये समझ लें आपने कुरान पे साथ कुफर कर लिया। रब्बी ना ये जुमला कहते हुए भी ना डर लगता है कि ला आज हम देखें एक बात जहन में रखिएगा, ये उनकी बात नहीं हो रही कुछ तो हमारे मुसलमान ऐसे हैं ना जो कि बिल्कुल उनको तो कुछ पता ही नहीं है, कोई शरीयत का कुछ अलिफ बे नहीं पता, ना नमाज के होश, ना रोजे की खबर, ना कोई अल्लाह तौबा, ना कुछ अल्लाह का जिक्र, उनका तो बिल्कुल ही हाल गया गुजरा है ना। ये उनकी बात नहीं हो रही है, ये उनकी बात हो रही है जो अपने आप को शरीयत के बड़े अमल करने वाले समझते हैं, जो खुद को बड़ा दीनदार समझते हैं, इसीलिए तो वो ईमान रखते हैं ना बाज हिस्से पे किताब के, अमल भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उन्होंने कह दिया कि हम तो बिल्कुल सेकुलर हो गए, हम तो बिल्कुल ही दीन से निकले हुए हो गए, हमें कोई नहीं, नहीं ये दीनदार है ही ना। अफ तो उमीनूना भी बात कर, तुम ईमान लाते हो बाज किताब के पास हिस्से पे, यानी कुछ पे अमल करते भी हैं, पूरे निकल नहीं गए वे बल्कि अमल भी करते हैं, मगर कैसा अमल है, पिक एंड चूज, पिक एंड चूज, पिक एंड, यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, ये कर लिया, ये कर लो, ये छोड़ दो, ये अगला ये कर लो, हाँ ये आसान है, ये कर लो, अच्छा ये छोड़ दो, पिक एंड चूज करते हैं। आज 99% मुसलमान क्या इसी में शामिल नहीं है? डर इस बात से लग रहा है कि जो बिल्कुल सब कुछ ही छोड़ चुके हैं उनकी तो बात ही अलग है ना। ये तो वो हैं जो अपने आप को दीनदार कहलाते हैं, जो कि वो नमाज पढ़ते होंगे, वो रोजा रखते होंगे, या जो ईमान रखते हैं बाज के पे किताब पे, बाज बाज चीजों को करते भी हैं, और कहते हैं हम देखें अमल तो कर रहे हैं ना, ये देखें हम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। जैसे बाज लोग नमाज रोजे में बहुत पाबंद है, बहुत पाबंद है, कुरान भी सुबह उठ के बड़े शौक से पढ़ते हैं, लेकिन बाकी जिंदगी में क्या करते हैं, इसमें इस्लाम का क्या ताल्लुक, ये तो हमें अपनी मर्जी से गुजारनी है, हम जिसको अच्छा समझेंगे उसको करेंगे, जिसको नहीं अच्छा समझेंगे, आउटडेटेड समझेंगे उसको नहीं करेंगे ना। तो आप देख लें, ऐसे लोगों की अक्सरियत है हमारे अंदर, हम भी उन्हीं में से हैं, हमारा जो दिल चाहता है हम करते हैं, जो दिल चाहता है छोड़ो, अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। अल्लाह ताला ने तो फरमाया ना कि उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, आधे आधे नहीं आ सकते, आधे नहीं, अगर आधे आओगे याद रखना तो क्या होगा, फरमा जजाओ मन यफअलु ज़ालिका मिनकुम लखिज़्युन फिल हयाति दुनिया, जो तुम में से ऐसा करेगा याद रखो उसकी उसकी सजा ये है, रुसवाई है दुनिया की जिंदगी की, जिल्लत है, शेम है उनके लिए दुनिया की जिंदगी की, ह्यूमिलिएशन है। हालांकि ये करते हैं बाज हिस्से की किताबें, ये देखिए मैं बार बार एक बात कह रही हूं, मत ये सोचेंगे ये तो उनकी बात हो रही है, वो तो छोड़ के रहे बैठे हैं, उनको तो कोई दीन का पता ही नहीं है, वो तो ऐसे करती हैं, वो तो फला नहीं करती, उनकी नहीं बात हो रही, ये वो है जो बाज हिस्से पे अमल करते हैं, उनके लिए है रुसवाई दुनिया की, इसलिए कि एक तो वो है ना जो काफिर है, जो कुछ भी नहीं करता, कहता मैंने मानना ही नहीं, एक वो है जो कहता मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ, मैं करती भी हूँ, करती हूँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ, और मैं सारी सब चीजें मानती हूँ, फिर भी उसके बाद उसके अंदर इतनी जुर्रत हो कि वो जो दिल चाहे करे और जहां पे दिल चाहे छोड़े, जहां पे दिल चाहे अमल करे और जिस हुक्म को दिल चाहे तोड़े, तो अल्लाह ताला को उसके ऊपर ज्यादा गुस्सा आता है कि उसके लिए रुसवाई है, रुसवाई है। आज देखिए मुसलमानों का दुनिया में जो हाल है ना इज्तमाही तौर पे, वो क्या हाल हुआ पड़ा है, वो यही हाल नहीं है क्या किस दुनिया में आज मुसलमान मुस्लिम पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी के बाद सबसे बड़ी दुनिया में पॉपुलेशन जो है ना मुसलमानों की है, हर फिफ्थ पर्सन मुस्लिम है, तब भी ये हाल है कि देखें अल्लाह माफ करे कि आज बाज लोग अपने आप को मुसलमान कहलाने में शर्म महसूस करते, आज मुसलमान ममालिक अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है, लेकिन आज भी लोग दूसरों के आगे, गैर मुस्लिमों के आगे हाथ उठाते हैं, हाथ हाथ फैलाते हैं। आज ये हाल है कि मुसलमान है, अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन दुनिया जहान में जलील है, किसी जगह देख लो मुसलमान का नाम बदनाम है, कोई इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहता, कोई इसको अच्छा नहीं समझता, कहीं टेररिस्ट कहते हैं, कहीं एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, कहीं फनेटिक कहते हैं, कहीं फलां कहते हैं, कितना कुछ कहते हैं, सोचे जिनके पास तो इतनी तेल के जखायर जिनके पास हैं, और जिनका ये हाल है कि जो कहते हैं कि हम ही हैं जो हक पे हैं, हमारा दीन है जो हक वाला दीन है, उसके बाद ये हाल है कि उनकी रुसवाई है सारी दुनिया में, उनकी तो रुसवाई नहीं होनी चाहिए थी, इनको तो सबसे बुलंद और मुआज्जज होना चाहिए था, लेकिन क्यों आज ये रुसवा है, ये अल्लाह तआला ने बता दिया, वजह बता दी। फमा जजाउ मन यफअलु ज़ालिका, जो करता है ये क्या कि तो उमिनूना बिबाद किताब का तफकुरूना बिबाद, जो ये करता है कि किताब के बाज हिस्से पर ईमान रखता है और बाज को छोड़ देता है, उसका ये हाल। इसीलिए वो शेर है ना, वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरआन होकर। वो जो हमारे असलाफ थे ना, वो ऑनरेबल दुनिया में किस लिए थे, मुसलमान होने की वजह से, और तुम ख्वार हो जलील हो दुनिया में किस लिए, तारिके कुरान कुरान को छोड़ने वाले हो गए, इसीलिए तुम जलील हुए। उनका भी यही प्रॉब्लम था और आज भी यही प्रॉब्लम, हर तबके में देख लो, एक कोई ना कोई एक गुनाह कबीरा है जो हमने अपने पर हलाल किया है, चाहे वो सूद की फॉर्म में हो, चाहे वो रिश्वत की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी और फॉर्म में हो, चाहे वो हराम कमाइयों की फॉर्म में हो, चाहे वो हराम जिंदगी बसर करने की फॉर्म में हो, चाहे वो झूठ और गीबत की फॉर्म में हो, चाहे वो और किसी तरह की भी फॉर्म में हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं कोई एक गुनाह कबीरा है जो हमने अपने लिए हलाल किया है। और यौमल कियामत युरदूना इला शद्दिल अज़ाब, और सिर्फ यहाँ पे ही नहीं बात खत्म हो जाएगी, कयामत के दिन वो लौटाए जाएंगे शदीद तरीन अजाब की तरफ, यानी अजाब से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे फिर उसमें लौटा दिए जाएंगे, फिर निकलने की कोशिश करेंगे फिर लौटा दिए जाएंगे। और दूसरा माना ये भी हो सकता है कि दुनिया में भी देखो रसवाई थी, वहां पे भी जाके आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली बात है, वहां पे भी रसवाई, दुनिया में भी जलील होते गए, अब सोचा क्यामत के दिन तो हमें बड़ा ऑनर मिलेगा, वहां पे भी जाके शदीद अजाब। क्यों तुमने काम किया है, तुमने कौन सा राइट है कि तुम पिक एंड चूज करो अल्लाह की किताब में, मानना है तो सारी को मानो, टेक इट और लीव इट, ऐसे मानो कि सारी जिंदगी के ऊपर ये किताब लागू हो। अब हम भी अपने आप से सवाल करें कि क्या मैं कुरान के सारे अहकाम को मानती हूं या कुछ को नहीं मानती, वो कौन कौन सी बातें हैं कि जो मुझे पता है अल्लाह का हुक्म है फिर भी मैं नहीं मानती, फिर भी मैं छोड़ देती कुरान को बदल देते हैं और खुद नहीं बदलना चाहते ना, खुद चाहते हैं कि मैं वही जिंदगी गुजारूं कुरान बदल जाए, इसकी कोई इंटरप्रिटेशन हो जाए। तो याद रखो वो अल्लाह बिगाफिल अम्मा तअमलून, अल्लाह उससे गाफिल नहीं है जो तुम अमल करते हो, तुम्हारे जो लबाते हैं नकाबे हैं और अबाए हैं और जो तुम्हारे अल्लाह तोबा और इस्तगफार करने की और झुरझुरियां लेना और हमें अल्लाह से बड़ा डर लगता है, और ये जो तुम्हारी दाढ़ियां हैं और जो तुम्हारी शलवारें मर्दों की जो टखनों से ऊपर है, उनसे अल्लाह धोखा नहीं खाता, याद रखना। और जो तुम्हारे ये जुबानी दावे है ना, और यहाँ पे क्लासें ले लेना, वहां पे क्लासें ले लेना, इधर पढ़ा देना, मैंने अल्लाह दिल देखता है, वो धोखा नहीं खाता। ये इंसानों को धोखा दे सकते हो कि वो कहे हाय बड़ी दीनदार बड़ी नेक बड़ी ऐसी, ये दुनिया वालों को तुम चकमा दे सकते हो, अल्लाह गाफिल नहीं है, अल्लाह गाफिल नहीं है। याद रखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जुल्म को जालिम को मोहलत देता है मगर जब पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं, यानी मोहलत अल्लाह की तरफ से आती है, तुम समझ लो अल्लाह को पता ही नहीं चला कि मैं जो मर्जी मतलब ऊपर ऊपर से कुछ दिखाऊं और अंदर से कुछ और बनी रहूं और बाज किताब के हिस्से को मानूं और बाज को गोल कर जाऊं, अल्लाह तो तुम्हें वो चुका रहा, अनवेयर ना समझो उसको। अल्लाह अकबर, न जा उसके तहम्मुल पर कि बेडब है गिरफ्त उसकी, डर उसकी देरगिरी से कि साथ है इंतकाम उसका, उसके तहम्मुल पे ना जाएं कि वो उसका तहम्मुल आप देख के ये सोचेंगे पता नहीं हमें छुट्टी मिल गई है, नहीं, वो देर करता है लेकिन अंधेर नहीं है वहां पे, उसका इंतकाम जो होता है ना फिर बड़ा सख्त होता है। उलाइक अल्लज़ीन अश्तरौ अल-हयात अद-दुनिया बिल-आखिरा, यही लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को खरीद लिया आखिरत के बदले में। मैंने आपको उस वक्त कहा था इश्तरा का हम मतलब देखेंगे, देखें पहले जमाने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था, पैसे तो होते नहीं थे, करेंसी नहीं होती थी, एक चीज लेते थे और दूसरी लेते थे, मसलन किसी ने कपड़ा बुनाया तो वो कपड़ा दे देगा और दूसरे से गंदम ले लेगा, किसी के ने जूता सिया तो वो जूता दे देगा और दूसरे के सबसे कोई तीर कमान ले लेगा, तो ये खरीदो फरोख्त इस तरह हुआ करती थी। यहाँ पे एक चीज लेंगे और एक चीज देंगे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दुनिया की जिंदगी ले ली है और आखरत को दे दिया, और जिसने अपनी आखरत ही दे दी उसका आखरत में जाके कुछ मिलेगा नहीं, उसने तो बेच दी आखरत, बेच दी, वो तो हमारी रही नहीं, अब आखरत कुछ नहीं रही हमारी, क्योंकि हमने तो दुनिया के फायदों को तरजीह दी ना, यहाँ पे ना नुकसान हो जाए, इसीलिए तो तकफुरुना भी बात करते हैं ना, यहाँ पे मुझे किसी की बातें ना सुननी पड़े, यहाँ पे मुझे किसी की नजरों में ना गिरना पड़े, यहाँ पे मैं जच जाऊं लोगों के सामने, लोग मुझे पसंद करें, लोगों में मैं अपडेटेड रहूं, लोगों में मैं ये रहूं, लोगों में मैं ऊंची रहूं, लोगों के मतलब की मैं बात करूं, लोगों की हाँ में हाँ मिलाऊं, बस ये सारे मुझे फायदे मिल जाए, मेरी जॉब भी चले, मेरे ये भी चले, दुनिया के फायदे भी मैं समेटूं, उसके लिए भले जाए, आखरत जाए तो जाए, मुझे क्या। तो ठीक है फिर दुनिया ले लो और आखरत बेच दो। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में फरमाया ना, क्या तुम आखरत की नीमतों को छोड़ के दुनिया की जिंदगी पर खुश होके बैठ गए? दुनिया की जिंदगी तो आखरत के मुकाबले में बहुत ही कम, दुनिया की जिंदगी के फायदे तो आखरत के मुकाबले में बहुत ही कम है, दुनिया की जिंदगी ही कम है तो उसके फायदे तो कम होंगे ही ना। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है ना, बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाह मक्सिम लाना, वो वाली जो दुआ है उसके अंदर आता है, अल्लाहुम्मा ला तजअल दुनिया कबरहमीना, ए अल्लाह इस दुनिया को ही मेरा सबसे बड़ा गम ना बना देना, इस दुनिया को मेरी सबसे बड़ी फिक्र ना बना देना, कि मैं इसी के पीछे घुलती रहूं सारा वक्त, मेरी परेशानी बस ये दुनिया ही रहे, कि बस मैं इसके पीछे ही मरी चली जा रही हूँ और इसी के पीछे पागल हूं चली जा रही हूँ और इसके पीछे मेरी फिक्रें खत्म ही नहीं होके दे रही, ना इसको मेरा सबसे बड़ा गम ना बना दे। अल्लाह अकबर, इंसान ये बेचता और खरीदता कैसे है, कैसे ये सौदा होता है, जब दुनिया के फायदे की खातिर आप अपनी आखरत को गिव अप कर देते हैं, अल्लाह के हुक्म को छोड़ देते हैं, मेरा दुनिया का कहीं फायदा चला ना जाए मुझसे, मुझे कहीं दुनिया का नुकसान ना हो जाए, उसके डर से मैं तकफूर होना भी बात करती। अल्लाह भले आखरत चली जाए दुनिया ना जाए, तो ऐसों के लिए फला युखफ्फुन हुम अलआज़ाब, ऐसों के लिए अजाब नहीं हल्का किया जाएगा, वला हुम युनसरून, और ना वो मदद दिए जाएंगे। दुनिया में तो आग जो लगी होती है कभी ना कभी कम हो जाती है उसकी हिद्दत, मगर ये तो अजाब कम नहीं होगा, सख्त से सख्त होता जाएगा और मदद भी नहीं आएगी कहीं से। तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें पूरे दीन पे चला दे, ना ये आधे आधे पे जो हम चल रहे हैं ना, जो अपनी मर्जी का करते हैं और मर्जी नहीं होती तो छोड़ देते हैं, अल्लाह हमें इनमें ना शामिल करना, अल्लाह हमें दुनिया की रुसवाई से और आखरत के अजामों से बचा लेना। बहुत ही सख्त शदीद आयत है और चूंकि हमारे ऊपर पूरी तरह फिट होती है, इसलिए बहुत ज्यादा इस आईने में खुद को देखने की जरूरत है, कहाँ कहाँ कमियां हो रही, कहाँ कहाँ कुफर कर रही और कहाँ ईमान रखती हूँ, कौन सी चीजों को लेती हूँ, कौन सी को छोड़ती हूँ। आप कुरान पढ़ते जा रहे हैं ना, देख लें कि मेरे क्या क्या रवैये हैं, कौन सी चीजों को मैं सोचती हूँ कि मैंने सुना है, मैंने सुन दिया है, समय ना वाता ना कौन सी पे करती हूँ और कौन सी पे कहती हूँ, समय ना वासा ही ना, खुद ही दिल में प्रोग्राम बना लेती हूँ कि मैंने सुन तो लिया ना, मैंने मानना नहीं है, पहले से ही मैं ठान लेती हूँ, ये वाला लेक्चर है ना, ये वाली अब बातें आ रही हैं ना, ये वाली आयतें आ रही हैं, ठीक है मैं सुन लूंगी, लेकिन मैंने मानना नहीं है, किन पे मैंने पहले से ही नियत की थी। दुआ करें, दुआ करें, हम सब दुआ करें अपने लिए, ला हम सबको पूरी की पूरी किताब पे चलने वाला बना दे। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون